अनुराग स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त करके यावदाश्रय वृत्ति को प्राप्त हो। यावदाश्रय का तात्पर्य है अनुराग का आश्रय है राग, प्रेम वृद्धि क्रमे हो स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है, राग जो है वही अनुराग में बदलेगा। और तो अनुराग का आश्रय है राग, तो अनुराग दशा प्राप्त है, जैसे राग जो है वो दशा को प्राप्त करके दशा अवस्था को प्राप्त करके अनुराग बनता है, ऐसे अनुराग भी दशा को प्राप्त करके महाभाव बनता है। अनुराग स्वसंवेद्य दशा प्राप्त हो, स्वसंवेद्य शब्द का प्रयोग नहीं करते सुखदेव श्री जी गोस्वामी रूप गोस्वामी की, अनुराग पराकाष्ठ दशा प्राप्त हो, ये कह देते दशा में नहीं पराकाष्ठा है कुछ इस तरह से वर्णन कर देते, परंतु वहां स्वसंवेद्य दशा दी, स्वसंवेद्य दिया। स्वसंवेद्य का तात्पर्य है कि जहां प्रेम का ही अनुभव नहीं किया जा रहा है, प्रेम के द्वारा कृष्ण का अनुभव नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रेम के द्वारा कृष्ण और कृष्ण प्रेम दोनों का अनुभव किया जा रहा है, वो है तीनों सुखों का जहां एक काल में अनुभव हो, उसका नाम है स्वसंवेद्य दशा। सामान्यतः कोई भी प्रेमी, श्री रुक्मिणी जी भी कृष्ण का दर्शन करती हैं, नागनी जी श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, प्रेम उत्पन्न हो रहा है उनमें, उनका जो राग है वो राग अनुराग अवस्था को प्राप्त हो रहा है, अनुराग बढ़ ही रहा है, परंतु कृष्ण का दर्शन करके चित्त में जो द्रवीभूतता आई वहां पर भाव रूप में कृष्ण का दर्शन है, ये प्रथम सुख है कि मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम विद्यमान है, ये प्रथम सुख। द्वितीय सुख क्या, बोले इस प्रेम के द्वारा कृष्ण का माधुरी का मैं दर्शन कर रही हूं, यह दूसरा सुख है कि प्रेम श्री कृष्ण एम अनुभूयते, वहां पर प्रेम हो गया कर्म करण साधकतम और कृष्ण हो गए ईप्सितम, प्रेम के द्वारा कृष्ण का अनुभव किया जा रहा है। कर्तु ईप्सितम कर्म, कर्म की परिभाषा है, कर्ता का जो ईप्सितम है वो होता है कर्म, प्रेम के द्वारा कृष्ण का दर्शन किया जा रहा है, प्रेम हो गया साधकतम मन करण इंस्ट्रूमेंट और कृष्ण हो गए ऑब्जेक्ट कर्म, ईप्सितम कर्तु ईप्सितम कर्म, ये दूसरा सुख है। और तीसरा सुख कौन सा है कि आहा कृष्ण प्रेम और कृष्ण का आस्वादन किया जा रहा है, यहां पर कृष्ण प्रेम स्वयं कर्म बनकर के विद्यमान हो जाए। एक शब्द में कहें तो ये कह सकते हैं कि जहां पर प्रेम ही कर्ता, प्रेम ही कर्म और प्रेम ही करण तीनों हो, उस स्थिति का नाम है स्वसंवेद्य। प्रेम के द्वारा प्रेम का भी आस्वादन हो, वह स्वसंवेद्य दशा। सब्जेक्ट भी प्रेम, ऑब्जेक्ट भी प्रेम, इंस्ट्रूमेंट भी प्रेम, तीनों वस्तुएं प्रेमी बन जाए, तो अनुराग स्वसंवेद्य दशम। अनुराग केवल पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि अनुराग के द्वारा अनुराग का भी आस्वादन जहां हो रहा है, उस दशा को प्राप्त करके जहां प्रेम प्रकाशित वृत्तियों के द्वारा भी सामने प्रकाशित हो, और यावद आश्रय वृत्ति स्वाद, अनुराग का जो आश्रय है राग, राग का लक्षण क्या है कि दुख की सुख रूप में प्राप्ति, वो ये राग। कुल रमणियों के लिए घर में रहना सुखदायक होता है, और ग्रह का त्याग करके लोक भेद की मर्यादा का त्याग करना महा कष्ट कर, प्राणों का त्याग कर सकती है परंतु लज्जा लोक भेद की मर्यादा का कुल रमणी का त्याग नहीं कर सकती है, परंतु जहां लज्जा और लोक भेद की मर्यादा का त्याग करने में भी इनको महामहा सुख की प्राप्ति हो, जो महा कष्ट कर वह हो जाए महा सुख कर, और जो महा सुख कर वही हो जाए महा कष्ट कर। गृहिणी के लिए घर में संभालना, घर की रानी बनकर के बैठे रहना, ये सुख की स्थिति, परंतु उस सुख का त्याग करके ये महा महा दुख का अनुभव करते हैं, घर में रहने में महा दुख का अनुभव करें और घर के सुख के त्याग को महा सुख का अनुभव करके अनुभव करें, इसका नाम है राग की पराकाष्ठा। तो जहां राग यावदाश्रय वृत्ति, राग में जो सुख है वो सुख अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के विराजमान हो। तो महाभाव का जहां लक्षण वर्णन किया गया वहां ही परकीय प्रेम महाभाव के स्वरूप में ही पूरी तरह से गुथा हुआ है। यदि गोपिकागणों के इस प्रेम को केवल स्वकीय परक ही माना जाए तो पूरे का पूरा जो स्थायी भाव की मान्यता है वो धारणा ही धराशायी हो जाएगी, पूरी जड़ी उखड़ जाएगी। श्री उज्जवल निर्मणि की जितनी भी प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए गोपिकागणों के प्रेम को प्रकट लीला में भी और अप्रकट लीला में भी दोनों ही लीलाओं में परकिया भावना से युक्त होकर के ही मानना पड़ेगा। परंतु सावधान, अंत में बात को कहीं कोई भ्रमित न हो जाए इसके इस बात को फिर से एक बात सुनाखनन न्याय के द्वारा सुपुष्ट कर देना चाहते हैं कि यद्यपि भावना में परकियात्व है, भावना में परकियात्व होते हुए भी ये गोपिकागण और श्री कृष्ण कोई प्राकृत नायक नायिका नहीं है। ये स्वरूप ही दो रूपों में प्रकट होकर के विराजमान आता है। ये स्वरूपतः परमस्वीय होकर के विराजमान, स्वकीय और परमस्वीय में अंतर है, यहां पर अंतर कर लेना चाहिए। स्वकीय होती है वेद मंत्र अग्नि साक्षी के कारण स्वकीय होती है, परमस्वीय होती है जहां पर सहज शक्ति शक्तिमान संबंध विराजमान है। ये सहज शक्ति शक्तिमान आह्लादनी शक्ति स्वरूपा होकर के विराजमान, परंतु आह्लादनी शक्ति स्वरूपा होते हुए भी हमारी जो उपासना है, वृंदावन के जो रसिकजन है, केवल गौरियों की बात नहीं कह रहे हैं, वृंदावन के जितने भी रसिकजन है वे श्री कृष्ण का लीलामय स्वरूप ही ध्यान करते हैं। तत्वात्मक स्वरूप का ध्यान उपासना में प्रधान नहीं है, लीलामय स्वरूप का यह ध्यान है। तो लीलामय स्वरूप आते ही, लीला आते ही परकीय भाव अपने आप आ जाता है, परकीय भाव अपने आप स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतः श्री प्रियागण परमस्वीया होते हुए भी इन योग माया के प्रभाव के द्वारा परकीय भाव धारण करते हुए श्री श्यामचंद्र के साथ में विलसती ही विराजमान, और उस परकीय भाव में बार्यमानता के कारण उत्कर्ष की प्राप्ति हो रही है। साथ ही साथ में एक बात और कहकर के आज का जो प्रवचन क्रम है उसे यहां पर विश्राम प्रदान करेंगे। कल से गोपियों का प्रसंग, श्री भ्रमर जी का जो प्रसंग है वो प्रारंभ करेंगे, गोपी उद्धव संवाद का, आज तो नंद बाबा का संवाद हुआ, वो ये कि श्री ब्रज गोपिकागणों का श्याम सुंदर के साथ में जब मिलन है उस समय उनके हृदय में ये भाव ही विराजमान है कि ये हमारे परम प्राण हैं। उत्कंठा वृद्धि करने के लिए तो परकिया है, परंतु जहां मिलन प्राप्त हो रहा है वहां पर सहज सहज नित्य परम स्वीय परम प्रेसी स्वरूप ही विराजमान है। उसमें कहीं भी कोई भी अंतर नहीं है, कहीं उसमें दुख का लेश मात्र भी हो वो दुख का लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि दुख का लेश आने पर फिर नूनता आ जाएगी। वार्यमानता यदि मिलन के समय भी वार्यमानता कहीं बनी रही, एकदम जहां निकुंज राज्य है, सहचरियों से सुशोभित होकर के जहां श्री युगल सरकार प्रेम विलास विवर्त में विराजमान है, वहां पर यदि परकीयता के कारण कहीं दुख का अंश आ गया तो दुखात्मक अंश आने पर कहीं न्यूनता आ जाएगी, सो बात नहीं है। ये लीला के लिए ही एक आत्मानुभवी भूमि प्रवाह देव भेदम कतहू, विलास करते हुए जब विराजमान है उस समय ये यही विचार कर रहे हैं कि मेरी प्राण धना श्री किशोरी जी हैं, उनके लिए सर्वस्व समर्पित श्री प्रिया जी यही विचार कर रहे हैं, मेरे प्राण सर्वस्व श्री श्याम सुंदर हैं, उनके लिए ही सर्वस्व समर्पित, वहां पर कहीं भी दुख का फिर छीता मात्र भी नहीं है, परम परम सुख सुखी विराजमान। परंतु उत्कंठा की वृद्धि उस भाव के द्वारा, केवल उत्कंठा की वृद्धि हो रही है, वह उत्कंठा ये जो भाव है वो उत्कंठा की वृद्धि तो करता है, परंतु कहीं दुखात्मक अंश को प्रकट करके प्रेम को न्यून नहीं करता। उस दुख के कारण प्रेम में कहीं, रस में कहीं न्यूनता की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए परम परम स्वीयत्व परमस्वीयत्व विद्यमान है। परम अतः श्री जीव गोस्वामी जी के वचन है कि परमस्वीय अपि परकीय माया एव ब्रज गोप्या हे परमसिया, परंतु परकीय माया न तो परकीय। श्री ब्रज गोप कह गए परकीय जैसा व्यवहार करती हुई विराजमान है, परकीय माया होकर के विराजमान है यहां पर भी और वहां पर भी। इस प्रकार अपूर्व रस को प्राप्त करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान और अपनी उन प्राण प्रेयसियों को धैर्य प्रदान करते हुए आप श्री उद्धव जी को ब्रज में भेज रहे हैं। अब उद्धव जी का जैसा संवाद होगा उस संवाद को आगे के प्रसंग में निरूपण करेंगे। विद्वजों ने अनुग्रह पूर्वक जो श्रवण किया उसे एक बात जरूर कह करके कि श्री जीव गोस्वामी जी ने जहां यह प्रतिपादन किया वहां अंत में सखी आत्मा का प्रतिपादन किया, परंतु अंत में एक श्लोक देकर के अपने हृदय के भाव को स्पष्ट कर दिया। एक दो मिनट में इस बात को जरा समाहरण कर देना चाहिए, इसको ये बड़ उपयोगी वस्तु है, बहुत ज्यादा उपयोगी वस्तु है। कि स्वेच्छया लिखितम किंचित किंचिदत्त परेच्छया यत् पूर्व अपर संबद्धम यत् पूर्व यत् पूर्वम अपर परम, ऐसा करके कहीं पंक्ति है कि स्वेच्छया लिखितम किंचित कि इस विवेचन में हमने स्वकीय आत्म का स्थापन किया है। जी को समझिए स्वकीय आत्म का वर्णन करते रहे तो स्वेच्छया लिखितम किंचित किंचित अत्य परिच्छया, कहीं हमने अपनी इच्छा से कुछ लिखा है और कुछ परीक्षा से भी लिखा है। परीक्षा कौन सी? बोले कोई मंत्रमयी निकुंज उपासना करने वाले सहज दाम्पत्य को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले उन रसकों को भी असंतोष नहीं हो उनकी इच्छा से भी हमने लिखा। तो ये जो स्वकीय आत्म की जो स्थापना है, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने तो सबका समाधान कर दिया। जीव गोस्वामी जी का जो हृदय भाव था उसको प्रकट कर दिया कि जहां अष्टाध शास्त्र मंत्र में गोपी जन वल्लभ शब्द आया उसका क्या तात्पर्य है, चाहे वो पति भविष्यति पति का क्या अर्थ है, जहां पर वल्लभ शब्द का प्रयोग किया गया, गोपवधु शब्द का प्रयोग किया गया, कृष्ण वधु शब्द का प्रयोग किया गया, नारी शब्द का प्रयोग किया गया, इन सारे शब्दों की व्याख्या कर दी। वल्लभ्यो में मदात्मिका, मेरी ब्राह्मणी मेरे व्योग में व्याकुल है, ब्राह्मणी का तात्पर्य जैसे पत्नी मान लिया जाए ऐसे मेरी गोपी व्योग में व्याकुल है, यहां पर स्वकीय आत्म की स्थापना। ये सारे तर्क श्री जीव गोस्वामी जी ने दिए थे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इन सबों का समाधान कर दिया कि भाई जो गोपी है वो मेरी प्यारी है, इस तरह से अर्थ कर दिया, उसके तात्पर्य को कई प्रतिपादन कर दिया और परकीय आत्म की स्थापना की। साथ के साथ में अंत में श्री जी गोस्वामी जी निरूपण करते हैं कि स्वेच्छया लिखितम किंचित किंचित अत्र परेच्छया, बोले हमने जो स्वकीय आत्म का स्थापन किया वह परेच्छा। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी इस सिद्धांत को प्रतिपादन करते हैं और जो हमारा अपना निज का मत है वो निज का मत परेच्छा ही है। तो श्री जीव गोस्वामी जी का परेच्छा मत तो यह है कि प्रकट लीला में स्वेच्छा और अप्रकट लीला में सुया। जीव गोस्वामी जी का परमत क्या है, परेच्छा मत क्या है कि अप्रकट लीला में तो सुया और प्रकट लीला में परकिया। ये दूसरों की इच्छा से हमने लिखा, यदि हमारे अपनी इच्छा को यदि देखा जाए तो प्रकट और अप्रकट दोनों लीलाओं में परकिया ही विराजमान है, ये उनका अपना निज का मत है। तो इसीलिए उन्होंने एक बात कह दी कि यत् पूर्वापर संबद्धम तत् पूर्वम अपरम परम, बोले जो पूर्वापर से संबद्ध हो पूरे श्रीमद् भागवत के साथ में जो संगति बैठाए हुए हो उस सिद्धांत को मानो, और जहां श्रीमद् भागवत को छोड़ दिया जाए या किसी अन्य ऐसे प्रमाण को रखा जाए जिस प्रमाण को वैष्णव आचार्य आद्य आचार्यों ने स्थापित नहीं किया, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके उदाहरण नहीं दिए, कहना नहीं चाहिए, परंतु जैसे गर्ग संहिता आदि हैं और उनके प्रमाण कहीं भी रूप सनातन आदि ने अपने ग्रंथों में कहीं नहीं दिया। अब ये कितने प्रामाणिक कितने प्रामाणिक सभी बंदनीय है, है तो सब भगवत लीला ही बंदनीय है, परंतु तो जो आर्ष प्रमाण नहीं है, एक शब्द में कहेंगे तो ये कहेंगे जो अत्यंत आर्ष प्रमाण नहीं है, ऐसे आर्ष प्रमाणों का त्याग करके ऐसे अस्पनों को ग्रहण करके जो स्थापन करेंगे स्वकीय आत्म का, वो हमें स्वीकार नहीं है। तो यह पूर्वापर संबद्धम श्रीमद् भागवत को आधार बना करके पूर्व अपर से का विचार ग्रहण करके जो वस्तु ग्रहण की गई है वो मेरा अपना मत है, और अपरम परम जो दूसरे का मत है वो दूसरे का मत है। दूसरा मत जो है जो वर्णन किया, स्वकीय आत्म की जो स्थापना की, नित्य दाम्पत्य की जो स्थापना की, वो नित्य दाम्पत्य आदि यह परमत है, परेक्षया लिखा हुआ मत है। अतः दाम्पत्य को प्रधान करके नहीं बल्कि परम स्वीयात्व को प्रधान करके ही शक्ति और शक्तिमान के अचिंत्य भेदा भेद को स्वीकार करते हुए जो परम स्वीयात्व है, एक आत्माना वसु भूमि परा देव वेदम कतौत, उस अचिंत्य भेदा भेद को स्वीकार करके जो परम स्वीयात्व है वो परम स्वीयात्व तो विराजमान, उसका तो त्याग किया ही नहीं जा सकता। अन्यथा लौकिकता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, अधर्म का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। परंतु जहां कृष्ण का लीलागत ध्यान किया गया है, उस लीलागत ध्यान में सर्वदा सर्वदा श्री ब्रज गोपिकागणों का अपना अभीष्ट वार्यमानता पूर्वक जो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य जो सिद्धांत है, उस प्रतिपाद्य सिद्धांत को ही आधार बना करके रसिक जनों को उपासना करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में अधिक समय ले लिया, उसके लिए सबको क्षमा सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए वचन को विश्राम प्रदान कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। भ्रमर लीला भ्रमर गीत प्रसंग पूर्व प्रसंग में श्री सुखदेव जी नंद उद्धव संवाद के अंतर्गत यह प्रतिपादन कराए कि श्री ब्रजराज को जिस समय कृष्ण के महिमा का स्मरण हुआ, बाबा तो भाववशीय कह रहे हैं कि भैया हमारे यहां पर ऐसा मालूम होता है कि रामकृष्ण किसी देवता ने ही जन्म लिया है। बस इतनी सी बात को पकड़ करके श्री उद्धव जी ने मन में विचार किया कि ये तो बड़ा अच्छा मुझे सहारा मिल गया। श्री उद्धव जी ने कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन प्रारंभ कर दिया, विचार किया ऐश्वर्य ज्ञान ऐश्वर्य वर्णन के द्वारा ही नंद बाबा के विरह को मैं शमित कर दूंगा, शांत कर दूंगा। तो श्री कृष्ण के ब्रह्म स्वरूपता का, श्री कृष्ण की अंतर्यामी स्वरूपता का, कृष्ण की भगवत स्वरूपता का गायन करते हुए श्री उद्धव जी ने विस्तार पूर्वक कृष्ण की महिमा का निरूपण किया। मानो ये प्रतिपादन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनके अंग कांति रूप में ही ब्रह्म ज्योति विराजमान, जिस समय वे अपनी शक्तियों का किंचित प्रकाशन करते हैं वही परमात्मा स्वरूप में अंतर्यामी रूप में विराजमान, और जब वे अपनी शक्तियों का ही परिपूर्ण रूप से प्रकाशन करते हैं तो वे ही भगवान रूप में भक्तों को दर्शन देते हुए उनके ऊपर कृपा करते हुए विराजमान होते हैं। जैसे सूर्य एक है, जिस व्यक्ति की दृष्टि अभी उतनी तैयारी नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, तेजयुक्त नहीं है, वह सूर्य को देखता है और कहता है सूर्य केवल तेजमय है, प्रचुर प्रकाशो रवि ही, रवि प्रचुर प्रकाश वाला है, वो प्रकाशमय है, वो उसे सूर्य केवल तेज रूप दिखते हैं। जिसकी दृष्टि और ज्यादा तेजस्विनी है, वो जब सूर्य को देखे तो वह सूर्य के गोले का भी दर्शन कर लेता है, सूर्य के मंडल का भी दर्शन उसे हो जाता है। उसकी अपनी अधिकार संपत्ति और सूर्य भगवान की कृपा, सूर्य भगवान ने उसके ऊपर जितनी कृपा कर रखी है, उसमें जो सामर्थ्य प्रदान कर रखी है, उसके अनुसार सूर्य के वह गोले के स्वरूप का भी दर्शन कर लेता है। परंतु जिसकी दृष्टि और भी ज्यादा सूक्ष्म है, वह सूर्य के उस गोलक के भीतर नारायण के पूरे रथमंडल का, सूर्य के रथमंडल का दर्शन कर सकता है। कि सूर्य का एक पहिया है, उसमें 12 आरे हैं, उसका 36,000 योजन का उसका विस्तार है, उसमें भगवान नारायण स्वयं विराजमान है, उनका सारथी है, वो सारथी सूर्य की ओर मुख करके विराजमान है, उनके साथ घोड़े हैं, सूर्य का पूरा परिवार है। एक नारायण के स्वरूप में भी श्री सूर्य भगवान का दर्शन कर सकता है। सूर्य एक ही, परंतु किसी को सूर्य दिखता है केवल तेज, किसी को सूर्य दिखता है गोला एक ग्रह, और किसी को सूर्य दिखता है वह साक्षात नारायण के रूप में दिखता है। ऐसे ही वो जो तत्व है, तत्व का तात्पर्य जो नित्य हो और जो आनंदमय हो, जो सच्चिदानंद होकर के जो पदार्थ पर विराजमान है, तत्व की प्रमुख दो विशेषता कि उसमें नित्यता होनी चाहिए और उसमें आनंद रूपता होनी चाहिए, और आनंद रूपता के प्रकाशन करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। एक शब्द में कहें तो उसे हम कह देंगे सत चित और आनंद रूप होकर के विराजमान, चित होकर के वह अपने आप का प्रकाशन करे, सत स्वरूप होकर के उसका अपना नित्य स्वरूप हो, जो तीनों कालों में भूत भविष्य वर्तमान में कभी भी बाधित न हो, साथ के साथ में जो आनंद रूप होकर के भी विराजमान हो, ये तीनों स्वरूपों से युक्त होकर के जो विराजमान, उसका नाम है तत्व। और वह तत्व अपने आप को तीन रूपों में प्रकट करता है, ब्रह्म परमात्मा और भगवान। श्री उद्धव जी ने नंद बाबा को श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही भगवान है यह प्रतिपादन किया, और ये कहा बोले बाबा न माता न पिता तस्य, अरे ब्रह्म तो निर्लेप होकर के सारे बंधनों से मुक्त होकर के विराजमान, उनके कोई माता पिता नहीं है। बाबा तो मुस्करा दिए, मानो कह रहे हैं कि अरे जिंदा मक्खी निगली जाती है, हम साक्षात माता पिता बैठे तो हैं और तू कह रहा है उसके कोई माता पिता नहीं है, पर कौन बात करे, ठीक है तू कह रहा है तो कहता रहे। श्री उद्धव जी ने ये कहा बोले बाबा आप अपने भ्रम के कारण ऐसा मान बैठे हैं कि वो हमारा पुत्र है, अरे वह आपका ही पुत्र नहीं, वह जितने भी भक्तगण हैं वे भी उसके साथ में ऐसी ही भावना रखते हैं, वो सबका पुत्र भी है, सबका पिता भी है, जो उसके साथ में जैसी भावना रखे वैसा ही वह अपने स्वरूप को प्रकट कर सकता है, इत्यादि इत्यादि कहा। बाबा हंस रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि उद्धव ने कोई नई बात तो कही नहीं, ये बात मैं सदा से सुनता रहा हूं, वरुण देवता के पास में गया, वरुण देवता ने मेरे बेटा की इसी तरह से पूजा की, इंद्र ने पूजा की, ब्रह्मा ने पूजा की, ठीक है, अब मेरा बेटा इस समय मथुरा पहुंच गया, मथुरा में पहुंच करके उसने कंस का वध किया, उसने 10,000 हाथियों का जिनमें बल, ऐसे कोवलिया प्रिय हाथी को भी उसने मार दिया, 3 साल के बराबर जिसकी लंबाई, ऐसे शिवजी के धनुष को उसने मना करते करते भी तोड़ दिया, देखते देखते ही उसने चारों और मुष्टिक जैसे पहलवानों को खेलते खेलते ही पछाड़ दिया। कृष्ण के इस पराक्रम का दर्शन करके सारे मथुरावासी कृष्ण से ये कहने लगे कि महाराज आप तो साक्षात परमात्मा हो, अब कृष्ण किस किस को समझाए मेरा बेटा कि भाई परमात्मा और रमत्मा मुझे क्यों कह रहे हो, क्यों मुझे परमात्मा बना रहे हो। अब सब कृष्ण को बुलाते हैं कि महाराज आप हमारे यहां पर पधारो, आप हमारे यहां पर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करो। श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि ये तो बड़ी आफत आ गई, किसको किसके निमंत्रण को स्वीकार करें और किसके निमंत्रण को स्वीकार न करें, ये तो एक आफत हो गई। जो आता है वही मुझसे कहता है बोले महाराज हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप ही ईश्वर होकर के विराजमान हो, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ होकर के आप विराजमान हो। ईश्वर की वैष्णवों ने जो परिभाषा दी वो परिभाषा यही है कि कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, ये ईश्वर की परिभाषा है। योग शास्त्र में जो ईश्वर की परिभाषा है वो भिन्न है कि क्लेश विपाक कर्माशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। योग शास्त्र में जो परिभाषा दी गई वो दी गई कि जिसमें क्लेश नहीं हो, कर्म नहीं हो, कर्म के विपाक नहीं हो, कर्म के संस्कार जिसमें न रहे और आगे कर्म करने में जो बाध्य न हो, कर्म से जो बधा हुआ न हो, ऐसा जो पुरुष है उसका नाम ईश्वर है। क्लेश पांच प्रकार के हैं योग शास्त्र में, अज्ञान, जो मोह इत्यादि जो पांच क्लेश हैं उनसे युक्त होकर के वो ईश्वर विराजमान नहीं है। तो क्लेश कर्म विपाक आशय इनसे अपरामृष्ट होकर के वो ईश्वर सर्वदा सर्वदा विराजमान है। परंतु वैष्णवों की जो परिभाषा है वो है कि जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, जो न होने वाला है उसको कर दे, जो होने वाला है उसको टाल दे, पूरी तरह से जिसमें सारी सामर्थ्य विराजमान हो। अविद्या अस्मिता क्लेश कर्म और विपाक इन पांचों प्रकार के अज्ञानों से दूर होकर के जो विराजमान वही ईश्वर नहीं है, बल्कि जिसमें कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य विराजमान है वह ईश्वर होकर के विराजमान है। तो श्री उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ही सर्व समर्थ है। कृष्ण मन में विचार कर रहे हैं कि मथुरावासी सब मुझे ईश्वर ईश्वर करके निरूपित करते हैं कि मारे आपने वो काम कर डाला जो कि कभी संभव नहीं था, कंस जैसे को इतने से छोटे से स्वरूप धारण करके आपने मार दिया, आप हमारे यहां पर पधारो, हमारे ऊपर कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा कर दो। श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि ये तो एक आफत आ गई, सब मुझे निमंत्रण देते हैं, इससे बचने का उपाय केवल एक यही है कि मैं भी अब ये कहना शुरू कर दूं कि हां मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरा न कोई माता है न पिता है, न मेरा कोई बंधु है, मेरा तो वो बंधु जो मेरी भक्ति करे। और भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे यहां पर आऊंगा, भक्ति नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे आतिथ्य को स्वीकार नहीं करूंगा। ये मन में विचार करके और मेरे बेटा ने उद्धव को ब्रज में भेज दिया है। यहां पर उद्धव इस बात को समझ नहीं रहे हैं, कृष्ण ने बहकाने के लिए मथुरा में जो कहा था कि मैं ईश्वर हूं, मेरा न कोई माता है न पिता है, कृष्ण ने तो अपना पीछा छुड़ाने के लिए बात कही थी, निमंत्रण देने वाले जो थे उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए बात कही थी। उद्धव बेचारा भोला भाला, उसने कृष्ण के इन्हीं वचनों को सुन लिया है और इन्हीं वचनों को सुनकर के आज मुझे ये उपदेश प्रदान कर रहा है कि बाबा न माता न पिता तस्य, उनका कोई नहीं माता है न पिता है, अरे उन्होंने लीला के लिए ही ये सारे कार्य किए हैं, आप उनमें ईश्वर भाव धारण करके विराजमान हो। जबकि मैं जानता हूं कि मेरे बेटे ने ये बात जो कही होगी वो उन अज्ञानियों से पीछा छुड़ाने के लिए, मथुरा वासियों से पीछा छुड़ाने के लिए उसने कह दिया कि मेरा किसी से भी मोह नहीं है, जो मेरी भजन करेगा मैं तो उसको दर्शन दूंगा, उसके ऊपर कृपा करूंगा। उद्धव कन्हैया की मन में भावना क्या है कि उद्धव ब्रज में जाकर के नंद बाबा को समझाएगा, ब्रजवासियों को समझाएगा, पर तो ब्रजवासी कोई भी इस बात को स्वीकार करेंगे नहीं कि कृष्ण ईश्वर है, और वे यही कहेंगे कि हम तो कृष्ण में ही एकमात्र भक्ति करेंगे। उद्धव आकर के जिस समय ये कहेंगे कि देखो मेरे ब्रजवासी ऐसे जो कि सबसे ज्यादा मुझ में भक्ति कर रहे हैं, जिनकी प्रीति ऐश्वर्य के कारण मुझ में नहीं है बल्कि सहज रूप में ही मुझ में विराजमान है, तुम तो मेरे ऐश्वर्यों को देख करके मुझ में प्रीति करने वाले हो, पर मेरे ब्रजवासी ऐसे जो बिना किसी गुण के कारण किसी उपाधि से रहित होकर के भी मेरे साथ में प्रीति करने के लिए तैयार है। वे मुझे ईश्वर करके नहीं मानते हैं परंतु प्रेम संबंध के कारण मुझसे प्रीति करते हुए विराजमान है। ऐसी स्थिति में ब्रजवासी ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और मैं ब्रजवासियों के पास में लौट करके जाता हूं। ऐसा विचार करके कृष्ण जल्दी यहां आ जाएंगे ये स्थापित करने के लिए ही उन्होंने उद्धव को यहां पर भेजा है। परंतु उद्धव इस बात को समझ नहीं रहा है। उद्धव कृष्ण के उन्हीं वचनों को केवल दोहरा रहा है, केवल उनका अनुवाद मात्र कर रहा है कि कृष्ण ने यह कहा कि मेरा कोई माता नहीं है, पिता नहीं है। कृष्ण ने यह बात मथुरावासियों से कही थी कि जो प्रीति करेगा उसके वशीभूत में हूं, और सबसे ज्यादा प्रीति निर्बाध बिना कारण के कहीं प्रीति है। जहां पर कारण देख करके प्रीति हो वो प्रीति शुद्ध प्रीति नहीं है, जहां बिना कारण के प्रीति है साहित प्रीति है वो ही प्रीति शुद्ध है, और ब्रजवासियों की मुझ में जो प्रीति है वही सहज प्रीति है। इसलिए ब्रजवासियों के समान कोई भी नहीं है। अरे मथुरावासियों, तुम भी ब्रजवासियों के समान नहीं हो। ऐसा विचार करके कृष्ण मथुरावासियों से कहेंगे कि अब मैं तुम्हारे पास में नहीं रहूंगा, तुम सब मुझे अपने पास में रोक करके रखना चाहते हो, मुझे त्याग करना नहीं चाहते हो, परंतु अब मैं लौट करके कृष्ण मैं ब्रजवासियों के पास में अपने नंद बाबा के पास में जा रहा हूं। अब तो मुझे नहीं रोक सकते हो, क्योंकि तुमने अपने आप देख लिया कि तुम्हारी प्रीति तो कारण के ऊपर टिकी हुई है। मैंने क्योंकि असुरों का वध किया, मैंने तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि की, इसलिए तुम मुझसे प्रीति करते हो, और ब्रजवासी बिना स्वार्थ के भी मुझसे निरंतर निरंतर प्रेम करते हैं। जो निष्कारण मुझसे प्रेम करे मैं तो उसके पास में जाऊंगा। इस तरह से बहाना बना करके एक तर्क दे करके और उस तर्क के सहारे ब्रजवासियों मथुरावासियों से अपने आप को छूट करके श्री कृष्ण वापस ब्रज आना चाहते हैं। परंतु उद्धव ये बात समझ नहीं रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि ठीक, कृष्ण जो है उनके कोई माता न पिता नहीं। अब हमको भी ऐसा विचार करना चाहिए कि हम उद्धव को ऐसा दिखाएं कि ठीक है, श्री कृष्ण ईश्वर है। ये कहीं दिखा देंगे तो कन्हैया को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि देखो ब्रजवासी इतना विलंब हो जाने पर भी मेरी याद करते हुए विराजमान है। आगे श्री नंद बाबा कहेंगे उद्धव की विदा के समय कि मतिर्न कृष्ण ईश्वरे, ये पंक्ति आएगी इसी अध्याय में आगे, उसकी भूमिका यहां पर है, वो जुड़ा हुआ है यहां पर वो पंक्ति। मतिर्न कृष्ण ईश्वरे के कृष्ण रूपी ईश्वर में हमारी मति लगे, ये बाबा ने अपने हृदय से नहीं कहा, ये कन्हैया के वचन का योग्य क्यों अनुवाद था। श्री उद्धव जी इसी बात को जाकर के जिस समय कहेंगे और श्री कृष्ण लौट करके यही बहाना लेकर के लौट करके आएंगे, बाबा इस बात को समझ गए और बाबा कह रहे हैं कि उद्धव कर्म विभ्राम्य माराणाम यत्र कुत्रापि ईश्वरेच्छया, हम अपने कर्म के कारण संसार में भ्रमण करते हुए डोल रहे हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि कृष्ण ईश्वर में लगे। तत्वतः ये कृष्ण को ईश्वर नहीं कह रहे हैं, ये तो कृष्ण के वचन का केवल अनुवाद मात्र कर रहे हैं। इन बहाने कृष्ण वहां पर कह सकेंगे कि मेरी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले ब्रजवासी हैं, इसलिए मैं ब्रजवासियों के पास में जा रहा हूं। बाबा मुस्करा दिए, हंस दिए। सुखदेव जी कल के प्रसंग में वर्णन कराए हैं कि इस प्रकार वो रात्रि जो थी वो रात्रि बात करते करते ही व्यतीत हो गई है। बाबा कृष्ण को अपना पुत्र करके ही मानते हैं, उद्धव कृष्ण को ईश्वर करके समझाना चाहते हैं, परंतु बाबा बस ऊपर ऊपर से हां कर रहे हैं। बाबा स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कृष्ण ईश्वर है, अपने मन में ही विचार कर रहे हैं ठीक है, कृष्ण ने अपने आप को ईश्वर रूप में प्रतिपादित करवाने के लिए उद्धव को भेजा है, ठीक है, ये कृष्ण की एक लीला मात्र है मथुरावासियों को चखना देने की, मथुरावासियों को से छूट करके ब्रिज में वापस लौट करके आने के लिए ही उन्होंने एक ये कूट नीति चलाई है, एक ये चाल चलाई है। ऐसा मन में विचार करके बाबा केवल हंस दिए। اور بابا نے سوئم ہی اس پرسنگ کو بیچ میں ہی روک دیا یہ کہتے ہوئے کہ اٹھو اب کب تک بات کریں گے, یہ بات چل رہی ہے چلنے دو, ٹھیک ہے پراتہ کال ہو گیا پہلے اسنان اتار کر رہا ہوں. ادھر اس سمے اسنان کرنے کے چلی ادگائے نام ارگند لوچنم وجاگنا نام دم پرشدن. اس سمے جتنے بھی برج گوپتا گئے وہ اچ سور میں کرشن گنانواد کا گائن کر رہی ہے. ادگائے اچ سور میں وہ کرشن کے گروہ کا گائن کرتی ہیں. اچ سور میں گائن کرنے سے کرشن پہلے ہی پرکٹ ہوئے تھے, کبھی ابھی بھی یعنی اچ سور میں گائن کریں گے تو شری کرشن پرکٹ ہو جائیں گے, ایسا من میں وچار کر کے یہ مدھر سور میں گائن کر رہی ہے. گیت کاوی کی چار وشیشتائیں پرمکھ ہوتی ہیں. گیت کاوی کی پہلی وشیشتا ہے اس میں بھاوکتا ہوتی ہے. گیت کاوی کی دوسری وشیشتا ہے اس میں کلاتمکتا ہوتی ہے. گیت کاوی کی تیسری وشیشتا ہے اس میں سنکشپتتا ہوتی ہے, اور گیت کاوی کی چوتھی وشیشتا ہوتی ہے اس میں سنگیت ہوتا ہے, اس میں مدھرتا, گائن کی جو مدھرتا ہے وہ مدھرتا بھی ہوتی ہے. یہ چاروں کے چاروں گن برج گوپتا گروں کے ان گائن میں آگے بڑھائی ہے. کوئی بھی گیت کاوی ہو ان میں چار گن ہوتے ہیں اور ایک گن سب سے زیادہ پردھان ہے پانچواں, اور وہ پانچواں گن ہے کہ اس میں آتما بھی ویکتی ہوتی ہے, اپنے آپ کے بھاؤں کو پرکٹ کرنے کی سامرتھ آتما ویونجن کی سامرتھ اس میں ہوتی ہے. جس میں اپنے ہرے کے بھاؤ کو پرکٹ نہیں کیا جائے تو وہاں تک گیت کا بھی نہیں بنے گا, وہ کیول کاوی ماتر بنے گا, کیول وہاں ورنن کرنے کی ایک پدھتی ماتر بن جائے گی. تو اس گائے کی نام جہاں پر اپنے ہرے کی آتم ابھیویکتی بھی ہوتی ہوئی براجمان ہے, جہاں پر پرم سنگیت بھی براجمان ہے, جہاں پر ہرے کی بھاوکتا بھی براجمان ہے, اس بھاوکتا کو ویکت کرنے کی جو سامرتھ وہ سامرتھ بھی جہاں پر پرپورن روپ سے براجمان ہے. کلاتمکتا جس کو کہتے ہیں وہ کلاتمکتا بھی جس میں پرپورن روپ سے براجمان, ایسے اچ سور میں مدھر مدھر گیتوں کو یہ برج گوپتار اپنے براہ میں اپنے آپ پرکٹ کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. جہاں پر ہرے میں براہ ہوتا ہے, پیڑا ہوتی ہے, تو وہاں پیڑا اپنے آپ ہی پگھل کر کے گیت کے روپ میں پرکٹ ہو جایا کرتی ہے. کوئی کبھی کہتا ہے آور سویٹسٹ سانگس آر دوز دیٹ ٹیل آف آور سیڈسٹ تھاٹس. ہمارے جو شیلی کبھی ہے, شیلی پرسدھ کبھی رہے, ان کی ہی پنکتی ہے, سب لوگ جانتے ہیں, ہمارے سندرتم گیت وہ ہیں جو ہمارے ہردے کی ویدنا سے نکلتے ہیں. جہاں ویدنا ہے وہاں گیت اپنے آپ, وہاں ویدنا گیت کے روپ میں اپنے آپ پرکٹ ہو جاتی ہے. شری برج گوپتاروں کے ہردے میں جو اپور ویدنا ہے وہ ویدنا, وہ اتکنٹھا ہی اپنے آپ گیت کے روپ میں پرکٹ ہو گئی. تو اس گائے کی نام اچ سور میں لجا کا تیاگ کر کے کرشن گنانواد کا گائن کر رہی ہیں. کرشن گنانواد کے ساتھ میں ان کی اپنی آتما بھی ویکتی, اپنے ہرے کے جو بھاؤ ہیں وہ اپنے ہرے کے بھاؤ بھی پرکٹ ہو رہے ہیں. اروند لوچنم شام سندر کی روپ مادھری ان کے سامنے پرکٹ ہیں. کیونکہ مد بھکتا یتر گائنتی تتر سشتھان نارد. شری لال کی اس اپورو شوبھا کا درشن کرتے ہوئے ان کے گیت کہاں تک نکلیں گے, کیسے نکلیں گے, اس کا کوئی ورنن نہیں کیا جا سکتا ہے. برجانگنا نام دیو مست شدھنی, وہ جو برج گوپتاگروں کا گائن وہ آکاش تک ویاپت ہو رہا ہے, مدھر سور میں وہ گائن سروتر ویاپت ہو رہا ہے. دہی مستی ہوئی چلی جا رہی ہے, اس سمے بھی ایک ساتھ تورک ان برج گوپتاگروں کے گائن میں پرکٹ ہو رہا ہے. تورک کہتے ہیں جہاں پر نتیہ وادیہ اور گائن یہ تینوں ایک سال میں اتپن ہو, سنگیت کے تینوں بھید, اس کا نام ہے سوجست. برج گوپتاروں کے شری ہست کے آبھوشن, ہاتھ کی جو چوڑیاں ہیں, چرنوں کے نوپور پتی کی جو کنکڑی وہ نیاری بج رہی ہے, دہی کے مسئلے کا سور بھی پرکٹ ہو رہا ہے, کنٹھ سے جو گائن ہے وہ گائن بھی پرکٹ ہو رہے ہیں, اور ساتھ کے ساتھ میں ان کے جو آبھوشن ہیں وہ آبھوشن نرتیہ بھی کرتے ہوئے اپنے روپ سے چلے جا رہے ہیں. کانوں میں جو تاتنگ دھارن کر رکھے ہیں وہ تاتنگ نیارے نرتیہ کر رہے ہیں. تو گائن بھی ہے, وادی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نرتن بھی شوہا کو پراپت ہو رہا ہے. برجانگنا نام دیومت پرسد دھونی آئے برج گوپتا کی, وہ جو کرشن گنانواد کا گائن وہ ترلوکی کو پوتر کرتے ہوئے براجمان ہو رہا ہے. دبنس نرمن شبد مشرتا, تال لگ رہی ہے کہاں, ریدم چل رہی ہے کہاں پر, وہ چل رہی ہے دبنس نرمن شبد مشرتا. دہی کا جو مسنا ہے وہ دہی کا مسنا جہاں پر تال دیتے ہوئے بھی براجمان ہے. آج رسکوں کے مخ سے گائی گئی وہ جو لیلا, وہ لیلا اتینت اتینت مدھر ہو کر کے براجمان, وہ جیسے سنسار کے پاپ کو دور کرنے والی ہے, ایسے کسی انی کے دوارا گائی گئی لیلا نہیں ہو سکتی. رسک جن کہتے ہیں کہ کرشن لیلا گائن تو پرم پرم منگل میں ہے ہی, پرنت یدی وہ مہاجنوں کے دوارا سنگیت ہو کر کے براجمان ہو تو وہ اوشی ہی اور بھی زیادہ مہنی ہو کر کے براجمان ہوگا. سوئم مہاجنوں کے دوارا گائی گئی لیلا کا جو انوتی پوروک گائن کرنا, اس میں جو سواد ہے وہ اپنی نجی کلتا میں سواد نہیں ہوتا. اس لیے مہاجن سنگیت کی اپیکشا انی جن سنگرشت جو کلتا ہے وہ نون کوٹی کی ہی ہوتی ہے. تو آج برج گوپتاروں کا جو گائن ہے وہ گائن ہی سرو سے سب سے زیادہ شریشت ہو کر کے براجمان. تو نرسے تے جین دشام منگلم, یہ برج گوپتاروں کا گائن ایسا جو دشاؤں کے امنگل کو بھی دور کرنے والا ہے. تب تو کہا شری کرشن نام کرشن لیلا جیسے امنگل کو دور کرتی ہے, وہ پاپ پاپ کی باسنا ان دونوں کو دور کر کے, بھجن میں آنے والی جتنی بھی بادھائیں ان بادھاؤں کو دور کر کے جیسے پریم کو اتپن کرتی ہے, ایسی کوئی دوسری وستو پریم کو اتپن کرنے والی نہیں ہے. کیول پاپ کی ہی نوتی نہیں, بھجن میں آنے والی بادھاؤں کی بھی نوتی, اور بادھاؤں کی نوتی ہی نہ کر کے بلکہ یوگتا کا پرتپادن کرتے ہوئے رس کا آسوادن کرانے میں جب کوئی وستو سمرتھ ہے تو وہ برج گوپ کاروں کے دوارا گائن رسک جنوں کے نتیہ پرکر کے دوارا کیا گیا جو کرشن کا گائن ہے وہ سب سے زیادہ شریشت ہو کر کے ہی جاننا چاہیے. تو دشاؤں کے امنگل کو دور کرتے ہوئے کیتو درپن مارجنم بھاؤ مہا داراگن واپرم شری کیرو چندر کا وترنم ودیا ودھو جیونم. چتروپی جو درپن, اس چتروپی درپن کے اوپر جو کالک جمی ہوئی ہے اس کالک کو دور کرنے میں بھی سمرتھ یعنی کوئی وستو ہے تو وہ شری ہری نام کرشن لیلا ہی ہے. بھگوان لیلا تو سرودا سرودا ہو رہی ہے, وہ تو نتیہ براجمان ہے, ہم کو نہیں دکھ رہی ہے. کیوں بولے ہماری آنکھوں کے اوپر رسوٹ پڑی ہوئی ہے. جب نام کا آشرے گرہن کیا جائے گا تو چتر روپی درپن کے اوپر جو میل جمع ہوا ہے, جو دھول جمی ہوئی ہے وہ دھول پٹ جائے گی. کوئی لیلا پرکٹ ہوگی اس بات نہیں ہے, لیلا تو پہلے سے براجمان ہے. دھول کے کارن وہ لیلا دکھ نہیں رہی تھی, دھول کے کارن اس لیلا کا آسوادن نہیں ہو رہا تھا. جب چت نرمل ہو جائے گا تو اسی لیلا کا آسوادن ہرے کرنے لگ جائے گا. چیتو درپن مارجن شری گردیو کی کرپا لیلا کو پرکٹ نہیں کرے گی, گردیو کی کرپا ہمارے اگیان کو دور کرے گی. اگیان سمران دھسیہ جانانجن شلاکیا چکشر میلتم, ہماری آنکھوں کے اوپر رسوٹ پڑی ہوئی ہے. لیلا تو پہلے سے ودیمان ہے, لیلا تو ہو ہی رہی ہے, کوئی نئی لیلا پرکٹ ہوگی تو بات نہیں ہے. اگیان سمران دھسیہ ہماری آنکھوں کے اوپر سمر آیا ہوا ہے. جب گردیو نے اپنی کرپا کی شلاکا کرپور شلاکا ہمارے نیتروں میں لگا دی, وہ انجن ہمارے نیتروں میں لگا دیا, اس کے دوارا آنکھوں کے اوپر آئی ہوئی جو رکود تھی وہ رکود میں دور ہوگی. شری کرشن لیلا تو سوئم پرکاش ہے, کوئی دوسرا اس کو پرکاشت نہیں کرے گا, وہ تو سوئم پرکاش ہے, وہ کسی انیہ دیپک کے دوارا بھی پرکاشت ہونے والی نہیں ہے, وہ تو سوئم پرکاشمان ہے. جان سوئم پرکاشمان نہیں ہے, پنت بھگوت بھکتی سوئم پرکاشمان ہے. گھر کے بھیتر گھڑا رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے گھڑے کا استتو ہے, پنت گھڑا اپنے آپ کو پرکاشت نہیں کر رہا ہے. دیپک کو کوئی لے جائے تو دیپک دو کام کرتا ہے, دیپک نے ایک اور اندھکار کو دور کیا, دوسری اور گھڑے کو پرکاشت کیا. پنت یہاں پر شری کرشن لیلا سوئم ہی پرکاشمان ہے, دیپک کے کارن گھڑا پرکاشت نہیں ہے, بلکہ وہ تو کرشن لیلا تو اپنے آپ ہی پرکاشمان ہو کر کے براجمان ہے. گرو کی کرپا نے ہماری آنکھوں کے اوپر جو اندھیرا تھا وہ اندھیرا ماتر دور کیا, اور ان کی کرپا اپنے آپ ہی ہمارے نیتروں میں یہ سامرتھ میں آپ کو پردان کر رہی ہے کہ ہم اس گھڑے کو دیکھ سکیں. تب تو گھڑے میں اپنے آپ کو پرکاشت کرنے کی جو سامرتھ تھی وہ تو گھڑے میں اپنے آپ پہلے سے ہی ودیمان تھی. اتہ بھکتی ورودھی جتنے بھی شبھاشو کرم ہیں وہی ہی بھکتی مارگ میں انترائے روپ ہو کر کے براجمان ہے, اور گردیو کی کرپا کے دوارا ان سارے انترایوں کی ہی نوتی ہوتی ہے. اتہ چیتو درپڑ مارجنم, چتر روپی جو درپڑ ہے اس کے اوپر جو دھول ہے اس دھول کو مارجن کرنا, وہ دھول شری ہرلیلا کرشن نام کرپا کر کے مارجت کریں گے, اور کرپا کر کے جیسے ہی مارجت کریں گے ویسے ہی ان نام میں جو مادھوری ہے وہ مادھوری کا آسوادن بھی سوئم پرکاش شکتی کے دوارا ہم کو پراپت ہو جائے گا. بھگوت لیلا بھگوت کتھا بھگوت ناؤں میں جو سوئم پرکاشتا کا گن ہے وہ ہمارے ہرد میں اپنے آپ اسفرت ہو جائے گا. بھاؤ مہا دعوت.